मथुरा लौट करके द्वारका गए। ऐसे कृष्ण की लीलाओं की मैं वंदना करता हूं। इसमें क्या हुआ?
संपूर्ण लीला,
बाकी कुछ रह गया? कुछ भी लीला बाकी नहीं है। एकदम प्रारंभ से ब्रह्मा की स्तुति से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना गोकुल लेकर के गए थे, फिर सागर में वहां से आरंभ किया और जन्म गोकुल में जाकर के जितनी लीलाएं हुई, इसके बाद में रासलीला समाप्त करके यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में कंस को कैसे मारा, उद्धव को भेज करके ब्रज में उद्धव संदेश इत्यादि का वर्णन करके और विवाह इत्यादि द्वारका में जाकर और वहाँ पर महाभारत का युद्ध समाप्त इत्यादि कर और वहाँ पर गोपियों से मिलन इत्यादि करा करके अब ये अंत करना एक ही में हो गया। जितनी लीलाएं हैं सबको, लीलाओं को क्रोड़ीभूत करते हुए अब मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक को उच्चारण। इस श्लोक में श्रीमद्भागवत एकदम प्रथम स्कंद से लेकर जन्मादस्य जतः से लेकर और प्रणामो सर्व की प्रणाम, हरिनाम संकीर्तन को प्रणाम, यहाँ तक अंतिम श्लोक सब कुछ इसके अंदर में द्वादश स्कंद। मंगलाचरण के रूप में श्रीमद्भागवत का महात्मा और भागवत कृष्ण के लिए, कृष्ण का महात्मा, उनका लीला चरित्र इत्यादि गान करके वर्णन करके इस श्लोक में अपने गुरु सुखदेव की भांति उपसंहार कर रहे हैं। उनके सुखदेव को स्वामी जी ने इस श्लोक के द्वारा अंतिम उपसंहार किया और जटी शब्द के द्वारा आज भी लीला कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर में कृपा करें। इस चीज के द्वारा सब जीवों के लिए मंगल आशीर्वाद इत्यादि दे रहे हैं। दशम स्कंद के शेष में सुखदेव गोस्वामी ने एक गंडूस में, गंडूस माने चुल्लू, एक चुल्लू में जैसे अगस्त जी ने समस्त विश्व के जितने लवण समुद्र है उसको पान कर गए एक चुल्लू, उसी तरह से समस्त कृष्ण चरितामृत को, श्रीमद्भागवत को पान कराने के लिए और करने के लिए परीक्षित महाराज जी इस विचित्र श्लोक को कहा। यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित, उन्होंने जैसे एक गंडूस में अगस्त जी ने समुद्र सारा पान कर लिया है, अगस्त के भांति ये सुखदेव गोस्वामी ने सारे भागवत को स्मरण करते हुए पान कर लिया है और पान कराया किनको, और उसी के बहाने वहां जितने उपस्थित थे और उन लोगों के अतिरिक्त सारे विश्व को अनादि काल से लेकर के जब तक जगत रहेगा तब तक ये पान कराते। इस तरह से परीक्षित महाराज जी भी उसी श्लोक को हृदयंगम करके और इसको कह रहे जय श्री जन निवासो देवकी जन्म बागो, जय की कृष्ण की जय हो, नाम नहीं लिया, काम देवम ये बतलाया, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोपियों के काम के मूर्तिमान विग्रह, संसार में सबसे जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं में सबसे श्रेष्ठ कामना किसके अंदर में है और क्या कामना है,
अंदर की कामना पैदा करना है,
कृष्ण को आनंद देना, यही उनको उनके अंदर में ये कामना सबसे श्रेष्ठ, इससे बढ़कर के और कोई कामना नहीं हो सकती। इसलिए कामदेव हैं अथवा गोपियों के काम को भी देने वाले हैं। अथवा कृष्ण शब्द को कैसे ले आए, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं इसलिए ले आए कि यह प्रकरण कृष्ण का था, कृष्ण संबंधी प्रकरण उनका, वह जा रहे थे। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, वो यहां से यमुना पार करके गोकुल में पहुंचे। कौन पहुंचा? इस तरह से यह प्रकरण के अनुसार में उस किसी चीज का अर्थ लगता है। इसलिए पहले श्लोक में कृष्ण का नाम लिखा है, क्यों कृष्णस्य, पहले इसके पहले श्लोक में
ये भगवत
वही इसमें आया, इसमें भी दिया है
या वही
उसी श्लोक में उन्होंने दिया कृष्ण सतत भगवत
प्रपदारविंद।
इसलिए यहाँ पर भी जैतु का अर्थ, जैती का तात्पर्य लेना चाहिए कृष्ण। इसलिए कृष्ण परम उत्कर्ष से विराजमान हो रहे हैं, कहाँ? पूरी, पूरी माने ब्रजपुर, और ब्रज एवं पूर दोनों अर्थ होगा, ब्रजपुरी माने ब्रज, अब ब्रज एवं पुरी, पुरी माने पुरी द्वय मथुरा और द्वारका, तीनों जगह में तीन लीलाएं करते हैं। ये जो अनुवाद कर रहे हैं सावरी पर प्रणाश्रम वाले थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं कि प्रकट लीला में गमनागमन नहीं है। सनातन गोस्वामी ने इसी में वर्णन किया, जैसे यहाँ पर ये पुरियां हैं,
प्रकट लीला पर घूम लीला
यहीं पर केवल है,
यहाँ गमन
वहाँ नहीं है,
वहाँ विश्वनाथ ठाकुर जी तो ऐसे ही कहा
है, ऐसे नहीं कहा है, कभी नहीं हुआ
नहीं।
देखो सनातन गोस्वामी का हम अभी विचार, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तुझसे बतलाएंगे। उन्होंने गोप कुमार को, गोप कुमार जा रहे थे तो यहाँ पर जैसा गोप कुमार देखा था जो ब्रज में, जैसे यहाँ है ब्रज, इसमें नंदगांव बरसाना इत्यादि पुरियाँ हैं गोकुल, और यहाँ पर मथुरा है इस जगत में, और द्वारका है और जगन्नाथ क्षेत्र है, ठीक ऐसे ही वहाँ पर पुरियों को देखा। तो जब भी मथुरा पुरी वहाँ है, द्वारका पुरी भी है, और स्पष्ट रूप में बताया तीन महीने वहां पर प्रवास, तो सनातन गोस्वामी का विचार क्या रहा है? इसलिए स्पष्ट रूप नहीं कर दिया,
महीने का प्रवास जो है केवल इसी में दिखाया, वहां नहीं,
नहीं वहां पर गोप कुमार को दिखला रहे हैं, गोप कुमार को दिखला रहे हैं, इस लोक की बात ही नहीं। जब वहां पर पुरिया है, मथुरा है, तो मथुरा किस लिए? फरसो है, द्वारका फरसो है,
वहां की लीला हो रही है, मिश्र लीला,
क्या वहां पर क्या लीला हो रही है? मथुरा की लीला क्या है, क्या लीला? द्वारका की लीला क्या है, क्या लीला है? प्रेम विलास किस रूप में? वहां पर उनको ब्रज लीला का स्मरण होता है कि नहीं? कौन सी ब्रज लीला का? जो पहले हो गया है, तो इसलिए वहां पर भी वो लीला है, इसलिए वहां पर नहीं है ऐसा नहीं, जो वहां नहीं है यहां भी नहीं है। कई भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीका में बतलाया, इसे हमारे विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी का ये विचार नहीं होगा। यदि वहां पर ऐसा भी प्रलंबन और प्रवास नहीं है तो यहां पर भी नहीं हो सकता। जो चीज वहां है ही नहीं है, मूल में बीज भी नहीं है, वो इस यहां पर कैसे होगा, इसलिए उसका सामंजस्य करना पड़ेगा।
आपने अगर बता रहा लोग सोचते हैं कि समुद्र चले गए, दो चार में गए थे लोग, कुछ भाव था ऐसा पता था।
देखो आलोक इस आलोक्य श्लोक में पहले जो कहा गया है सौ स्तुति के क्रम से और रीति के अनुसार से उत्तरोत्तर उत्कर्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया। तीन लीलाओं पहले वर्णन करना चाहिए था, ब्रज लीला का, तब फिर मथुरा का, तब फिर द्वारका का, ऐसा होना चाहिए, किंतु इन्होंने क्या किया, अभी जो समाप्त किया है द्वारका के लीला का,
पहले मथुरा
से भी मथुरा का कहो या द्वारकापुरी का, तो उसकी स्मृति से अभी निकट की है इसलिए उसका पहले वर्णन किया। या भाव में ऐसे उन्मादग्रस्त हो गए कि पूर्वापर का विचार नहीं रह करके जो स्मरण में आया वही उन्होंने कहा, जखन जहां मौने पड़े तखन तहां, प्रेम में ये सब विचार का नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है लोगों को बतलाने के लिए, जैसे ये बतलाया ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, वो इसके लिए बतलाया, जैसे पहले ये जगत
गोलो को नाम
तले तस्त देवी महेश हरिधाम, देवी महेश हरिधाम, नीचे से उत्कर्ष ले जा रहे हैं तो इसको लोग समझेंगे, आप ऊपर से उत्कर्ष वर्णन करेंगे तो समझने में विलंब होगा, इसलिए नीचे से ही उत्कर्ष दिखला रहे हैं। इसलिए नीचे से उत्कर्ष यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है द्वारका मथुरा और इसके बाद में वृंदावन का वर्णन किया। यहाँ पर जैति जन निवासो इत्यादि छ इसमें भी विशेषण है, जन निवासो देवकी जन्मवाद जदुवर परिषद स्वरी दोर्भी रसन्न धर्मन खिलचर बीज नग्न सुस्मित सी मुखेन ब्रज गुरु बनिस्तान। कितना हो गया, सौ। छ विशेषण के द्वारा ये छ हुआ, छ हुआ। सुस्मित सिमुख है न ब्रजपूर्व बनितान अंग वर्धन का, ये एक हुआ। और श्रीचर ब्रज नग्न ये दो, स्वर दौर्भिरचन सिंह जदुवर परिषद देवकी जन्म बादो जन निवास के द्वारा। जन माने यहाँ पर जितने भी विश्व में हैं उनके अंदर में दो चीजें हैं, एक तो साक्षी रूप में परमात्मा है, ये परमात्मा को कृष्ण ही समझो, और काम भी है कि नहीं है, काम भी है। तो जीवों के हृदय में निवास करने वाले अथवा निवास शब्द का अर्थ आश्रय से जीवों के आश्रय हैं अथवा आधार, अतः इसलिए जीवों के जितने भी जीव हैं उनके अंतर्ज्ञानी रूप में वो रहते हैं। अभी साधारण रूप में हम लोग के अंदर में परमात्मा साक्षी के रूप में कैसे हैं, वो बड़े निष्ठुर भी है और कैसे है, प्रेम शून्य है, दया ताया कुछ नहीं है, नहीं तो पाप करने पर भी यदि दया होगी तो उसको छोड़ दे, किंतु ये क्या करते हैं, जैसा करो वैसा भरो, तनिक भी दया नहीं, कोई कोई भी छूट दे देंगे ऐसा, जैसा करेगा भजन करके तुम्हारे पाप पुण्य सबका कर्म का अच्छी तरह से वो फल देंगे, इसलिए साक्षी स्वरूप है। जैसे जज बैठा है जजमेंट करने के लिए, दोनों पक्षों को सुनेगा और विचार करेगा, जानता है कि इसने गलत नहीं किया है, किंतु साक्षी और प्रमाण ऐसा हो गया है ये दंडनीय है, तो क्या करेगा, और जानता है कि इसने मर्डर किया किंतु साक्षी साबुत कुछ नहीं है तो क्या करेगा, छोड़ देगा, साक्षी सबूत के ऊपर में अपने ऊपर में ये विचार करके देख रहा है जैसे ये गलती है नहीं है, और तभी क्या करेगा, इसलिए वो साक्षी के रूप में है। किंतु यही वो भक्त हो जाता है, वो सब है कि कहां तक, कर्मी जीवों के लिए, और जहां पर ज्ञान हो जाएगा तो वहां पर मुक्ति इत्यादि के देने के लिए उस रूप में हो जाएगा, और जिस समय में भक्ति उदित होगी तो जैसी भक्ति जिस स्तर की होगी कृष्ण वो परमात्मा उसी रूप में बदलते चले जाएंगे। जैसे हनुमान जी के साक्षी कौन है, रामचंद्र है या सीताराम को, और ये बिल्लमंगल के कौन साक्षी हैं, मयूर पुच्छधारी श्री कृष्ण है। ऐसे ही भक्त है तो फिर वो केवल साक्षी नहीं रहेंगे, यदि वो कोई काम खराब भी हो गया तो क्या होगा, पाप का काम भी कर दिया यदि क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर उसका पक्षपात ले लेंगे, उनको तो छोड़ दो, अनजान में भी कोई यदि कृष्ण नाम ले लिया अजामिल जैसा व्यक्ति या और कोई, उसके समस्त पापों को वो दूर कर देगा, किंतु इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नम अपराध हो जाएगा। जीवों के भीतर जो बात करते हैं, जीवों के हृदय में बात करते हैं, तथा जन शब्द के द्वारा ये समझो अपने जो स्वजन हैं, स्वजन माने कौन, जैसे ब्रज के लोग, मथुरा के लोग हैं, द्वारका के लोग हैं, उनके भक्त लोग हैं, जब इसे वो शरणागत हुआ गुरुपाद पद्म में और कृष्ण के चरणों को ग्रहण किया और कृष्ण मंत्र में एकांतिक भाव से वो ग्रहण करते हुए उसी से उनकी पूजा करता है, जब से वैष्णव तभी से वो उनके जन है। अब जन में भी तारतम्य, सब जन एक बराबर नहीं है, साधारणों के लिए साधारण, और इसके बाद में जब उनके निज जन हुए, अब चल चलो इसमें नारद जी जो जा रहे हैं मूर्ति पूजक से लेकर जगन्नाथ में गए, वहां से इंद्रलोक में गए, ब्रह्मा गए, ये सब निज जन है, वहां से चले शंकर जी के यहाँ, वो निज जन है, उनसे निज जन हुए प्रहलाद महाराज, और उनसे भी निज जन हुए हनुमान, और हनुमान से निज जन हुए उद्धव पांडव, और पांडवों से पांडवों में भी ये पांच हैं, और मैया यशोदा हैं और द्रौपदी हैं, इनमें जन के हिसाब से कहां तारतम्य है, नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर भीम अर्जुन कौंती द्रौपदी, ये सब निज जन हुए, और यहां से चले अब उद्धव जी के यहां द्वारका, द्वारका में भी बहुत जन है, वहां पर निजनों में श्रेष्ठ ऊपर से यद्यपि बतलाया है उद्धव जी को, किंतु हमारे विचार से कृष्ण ने यद्यपि ऐसा कहा किंतु सत्यभामा रुक्मिणी और विशेष करके सत्यभामा अपनी निजन है। सत्यभामा और फिर वहां से मध्यस्थ भाव उद्धव में है, उनका श्रेष्ठत्व इसीलिए है कि वो गोपियों के पास में भेज या जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां पर भेजते हैं अपना प्रतिनिधि के रूप में, किंतु भावना की दृष्टि से उद्धव में महाभाव तो नहीं कहा गया है, किंतु इन गोपियों इनमें सत्यभामा में ये सब चीजें या रुक्मिणी में भी दिखलाया गया है, यहाँ तक कि वहां की जितनी रानियां हैं उसके अंदर में भी दिखलाया गया है। इसलिए और उनसे भी ब्रज के जितने भी थावर जंगम प्राणी हैं वो उनके लिए जन है और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं धीरे धीरे ऊपर नीचे से सखा लोग हैं, माताएं हैं, माताओं से भी बढ़कर के गोपियां हैं, गोपियों में भी कौन कौन गोपी, इस तरह से श्रीमती राधिका को ले रहे हैं। ये है अपना निज जन। तो जयति जन निवास हो मैंने ये सबको समझ लो, कोई इसमें बाद नहीं, सभी नीचे से लेकर के ऊपर तक जन निवास, ऐसा कोई जीव नहीं है जो कृष्ण का अपना नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए वहां पर साथ जो जैसा चाह मानता है उसी रूप में उसके हृदय में वो निवास करता है। इसलिए अपने भक्तों के अंतर में निरंतर साक्षात स्फूर्ति प्राप्त हुआ करते हैं। ये क्यों बतला रहे हैं? जन निवास का तात्पर्य क्या है? जन के अंदर में निवास करते हैं, उनको दुखों को देखते हैं कि ये सब ये हमारे विमुख होकर के संसार में दुख भोग रहे हैं और पृथ्वी देवी जी जन निवास में हैं, उनके हृदय में निवास है, उनके दुखों को देख करके वो ब्रह्मा जी के पास में गई और अपना दुखड़ा उनसे रोया कि असुरों के उत्पात से असुरों का भार हमारे ऊपर में हो रहा है, उन सबका प्रतिनिधि होकर के तो ही गई हैं। अब वो ब्रह्मा जी फिर सागर पर गए और इसकी व्यथा जगत की व्यथा उन्होंने सुनाई अपने इष्टदेव को गर्भोदशाई को, और गर्भोदशाई जी आकर के बोले जैसे हमारे प्रभु इसको पहले से ही जानते हैं वो। अब वहीं प्रार्थना से आरंभ करें वहीं से भागवत आरंभ हुआ, वहां से लेकर के अब फिर चले आए देवकी जन्म बाद, अब वहां पर जन्म लीला इत्यादि का वर्णन करेंगे। इसके द्वारा पर ब्रह्मत्व परमात्व सर्वेश्वरेश्वरत्व और सर्व अवतार कृष्ण बीज स्वरूप है इसका ये दिखलाया। ब्रह्मा जी गए, ये समष्टि जीव है ब्रह्मा, समष्टि जीव ये जीव उसके व्यष्टि जीव व्यष्टि जीवों के वो समष्टिगत ब्रह्मा जी, अर्थात समस्त जीवों को लेकर के ही वो गए, प्रभु से निवेदन किया है। इसलिए सर्व अवतार बीजत्व कृष्ण है और पर ब्रह्म भी है, परमात्मा स्वरूप भी है जन निवास स्वरूप और सर्व ईश्वरत्व समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर ये कृष्ण है और वही उसी स्वरूप में कृष्ण के स्वरूप में ही ऐश्वर्य इत्यादि की पराकाष्ठा है। कैसे पराकाष्ठा? वही पर ब्रह्म सर्व जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, समस्त अवतारों के जो बीज हैं, वो स्वयं देवकी जन्म बादो देवकी के जन्म बाद माने प्रसिद्धि है, देवकी के जन्म के रूप में उनकी प्रसिद्धियाँ की देवकी के, और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अर्थ किया है देवकी जन्म बाधौ प्रभात्मा। प्रभात्मा ने क्या है ये ठीक नहीं है किंतु लोग कहते हैं, असल में उनका जन्म वो जसोदा नंदन है। देवकी से जन्म ग्रहण करने से ये प्रतीत चलता है कि ऐसे ही अधिकतर रूप में ख्याति है। ब्रजवासियों के अतिरिक्त बाकी सब लोग समझते हैं ये मथुरा में ही जन्म। जितने देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, सब मथुरा में जन्म का प्रतिपादन करते हैं, किंतु ब्रजवासी लोग इसका प्रतिपादन नहीं करते। यहां जन्म प्रकट का विचार ये है, देवकी के घर में जन्म लिया, चतुर्बाहु के रूप में लिया, और उस समय में देवकी जी ने और वसुदेव जी ने इनकी वंदनाएं की, स्तुति की, और कृष्ण ने उनको बतलाया कि मैं वही हूं जिसकी तुम लोगों ने बहुत आराधना की थी कश्यप अदिति के रूप में दूसरे जन्म में विष्णु के पास, और तीसरे जन्म में देवकी वसुदेव। तुम लोगों ने प्रार्थना की थी, तुम्हारी प्रार्थना से को सुन करके हमारे जैसा और तो कोई है नहीं, पुत्र के रूप में हुआ, इसीलिए मैं चतुर्भुज रूप कर दिखलाने के आया कि मैं वही हूं। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे के समान हो जाइए तो आपको जीवित रखने की चेष्टा हम लोग, इसलिए प्राकृत शिशु बहु कृष्ण हो, और कहा कि हमको गोकुल में ले जाओ। किस लिए कहा गोकुल में ले जाओ, कहने का कारण भी है इनको पता ना चले कि वहां पर भी पैदा हुए हैं, नहीं तो इनका वात्सल्य कम जाएगा। यदि कह देते ये देखो हमारा अंत में ये पुत्र पैदा हुआ और वहां पर भी हुआ है, ले जाओ वहां पर, इसको ले जाने से वहां उसमें मिल जाएगा, एक बन जाएगा, तो क्या होता, लीला गड़बड़ हो जाती, इसलिए नहीं बतलाया। और इधर में जसोदा जी का भी वात्सल्य होता जो वो कम जाता, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं चलने दिया तनिक भी, नहीं तो लीला ही क्या रहेगी। इसलिए गोकुल में जो आनंद की जो लीला इत्यादि सनातन गोस्वामी कर रहे हैं वो सारे वृतांत इसी एक देवकी जन्म बादों में ही लिख दिया, और गोकुल में जितनी लीलाएं हुई, कौन सी लीला, वहां पर जन्म, नंद बाबा का उत्सव पुत्रोत्सव, और पुतना का वध, इसके बाद में तृणावर्ष, सकट भंजन, पार्श्व माने पार्श्व परिवर्तन, कृष्ण तीन महीने तक सीधे ही रहे, या लेटा दिया पेट की तरफ में तो अब उलट नहीं सकते थे, जैसे रख दिया वैसे रख। तो इसके बाद में देखा है गोपियों ने जैसे ये तो ऐसे सो रहा था, ऐसे कैसे हो गए, बस उत्सव होने लगा, कहा जो उत्सव दो ब्राह्मणों को विशेष करके। यदि यशोदा मैया ने कहा जैसे आज ऐसे हो रहा है कृष्ण को जम्भाई आ रही है, कहा जैसे ब्राह्मणों को भी भोजन करके उनको खूब दान दो, बस वैसे ही कर, और कुछ न कुछ निकाल लिया। क्या निकाल लिया जी, गोबर इसके ऊपर में गैया का, गाय के पूंछ में लगा करके ऐसे, मैंने कोई अनुष्ठान बतलाएंगे रुचि कर, और बस गोपियां उसी में लग जाती हैं। तो ये सब, और दधि चोरी, मक्खन चोरी, दामोदर बंधन लीला इत्यादि लीलाओं का वर्णन इसी के अंतर्गत में समझ लो। तो ये सब लीलाओं की स्फूर्ति इन श्लोकों के द्वारा होगा। स्वजन्म कारण के प्रसंग में वर प्रदान से लेकर और जितने भी वर्णन है ये सब इसी एक देवकी जन्मवादों में आ गया। अब पहला जन्म निवासों में क्या आया, उसके पहले का जितना जो लीला थी, ब्रह्मा जी के आदि का जाना, प्रार्थना, ये सब श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत सातों कांड रामायण इसमें हो गया है। आदो राम तपोवनादि गमनम गमनम आदो राम सपो बनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम लंकापुरी दाहनम पश्चात कुंभकर्ण आदि हननम इत्यादि रामायणम बोले यथब तो भूल गया बस एक श्लोक ऐसे यहाँ पर भी। और बंगला में क्या है, एतबलि हनुमान एक लंफ दीला सीता के ओ पार होते ए पार आने का बस सत्कांड रामायण हो। इसलिए ये सब जितने भी लीलाएं हैं वहां पर किया। और क्या, यही नहीं, गोकुल को समझ लो वृंदावन भी, नंदगांव बरसाना, इसके बाद में वृंदावन में जो आए तो वहां पर मधुपुरी में, वहां मधुबन, तालबन, कुमुदबन इत्यादि की लीलाएं, यहां पर गोचारण, गोवत्स, और उसमें मारा वत्सासुर को, इसके बाद में काली दमन की लीला, गोवर्धन धारण पीछे तो अच्छा वो भी, और ये देखा वहाँ भांडीरवन की लीला, वृंदावन में जितनी लीलाएं हुई हैं वो सब लीलाएं, नंदगांव में जितनी भी लीलाएं हुई हैं, और द्वादश वनों में जितनी भी लीलाएं जो हुई हैं ये ले लो कहाँ तक, केसी बध तक, वो सब लीलाएं इसमें आ गई, इसमें आ गया देव की जन्म बादने इसमें आ गया, वही गोकुल है ना, गोकुल में ये हुआ इसलिए इसमें आ गया। अतपर जदुबर परिषद अब ये क्या ले आए, मथुरा की लीलाए यहीं से आरंभ हुई, इसलिए वहां पर कंस का वध किया, उसके भाइयों का वध किया, चरण मुष्टिक इत्यादि का वध किया, और जदुबर परिषद है ना वो सब राज्य क्या किया, कुबेर को दे दिया। ऐसे परम उदार उनकी जो लीलाएं हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब उनको दे दिया। और जदुबर परिषद और यहीं पर समस्त जदुपुरियों को लेकर के कहां चले गए, एक रात में चले गए वहां, और वहां पर महाभारत युद्ध इत्यादि जितनी भी लीलाएं हैं, विवाह अपना, पहले बलदेव जी का विवाह, फिर अपनी ये आठ पटरानियों के साथ में शादी, उसका विशेष वर्णन, इसके बाद में 16,000 रानियों के साथ में विवाह, और इसके बाद में प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि के सब उदाहरण इत्यादि, महाभारत युद्ध इत्यादि, कुरुक्षेत्र गमन लीला इत्यादि सब इसके द्वारा लिया। जदुबर सभा जिनकी जदुबर परिषद, परिषद माने क्या होता है, परिकर माने सेवक, इसके द्वारा भी सोना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दोनों को बतलाया, नंद बाबा का ये गोप वंश और इनका क्षत्रिय वंश यादव, दोनों ही उनके परिकर हैं, उसमें श्रेष्ठ परिकर नंद बाबा इत्यादि, यादवेंद्र हेतु जदुकुल में द्वेषकारी जो कंस, जदुवर परिषद मैंने यहां पर ये लिया है, कंस जरासंध इत्यादि दुष्ट राजाओं का वध किया, जिसमें से कालजवन, जरासंध और कुछ ऐसे असुर हैं जिनको अपने से नहीं मारा, क्या किया, अपने भुजाओं से मारा, भुजाएं कौन, अर्जुन, भीम और सब हैं, बलदेव प्रभु हैं और ये सब किए, इसके द्वारा अपने जनों के दुख कौन सा दुख? एक तो संसार सुख और दूसरा है विरह जनित दुख। इसके द्वारा उनका सुख विधान करके परम करुणा के राशि का दर्शन किया है। परम कारुणिक है। एक बार भी यदि उनको किसी ने आत्मसमर्पण किया वो छोड़ नहीं सकते। उसके जितने भी दुख हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, उसका विनाश करने वाले हैं। इस श्लोक के द्वारा ये भी हम लोगों को सांत्वना है। यदि तुम लोग दुखी है और उनके शरणागत हो जाओ वो जरूर दुख दूर करेंगे। अपने समस्त भक्तों का ये दुख दूर किया। जैसे सबसे पहले देवकी और वसुदेव कंस का अत्याचार, इसलिए ब्रजवासियों को भी छोड़ दिया, छोड़ करके चले आए मथुरापुरी, उन्हीं के लिए आए थे। अक्रूर ने ऐसा ही बतलाया और उस पर वो दिल रसाया। अच्छा भी मारेंगे, मारने के लिए आए यहां है तो उलझ गए झाड़ियों में, उनसे निकल नहीं पाए। इसी तरह से जदुबार परिषद, तो इसलिए उनको मारा क्यों नहीं? ये श्रेय उनको दिया प्रतिष्ठा भक्तों को। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने स्वयं हरि भक्ति विलास लिखकर उसकी टीका लिख करके अपने को दीनहीन बतलाया और ये श्रेय उनको दिया, वैसे भगवान ने भी अपने भक्तों का जितना श्रेय है। मैं मार नहीं सका, जरासंध को मैं नहीं मार सकता था, या हमारे वंश का कोई नहीं मार सकता था। कालजवन में भी ऐसा था, जदुकुल में कोई उसको मार नहीं सकता था। कृष्ण मार सकते थे कि नहीं? आखिर मारा किसने? जरासंध को किसने मारा? कृष्ण ने। ऐसे चिरा ना तो वो सचमुच में चिर गया। कालजवन को किसने मारा? देखने में लगता है कि वो मुचकुंद जी ने, किंतु मारा नहीं उन्होंने। वो जाकर के उसके पीछे खड़े हो गए और ऐसी शक्ति संचारित की, आंख से उसके तरफ में देखा और वो जल करके भस्म हो गया। तो वो इच्छा करने से विश्व के जितने जीव हैं उसके दुखों को दूर नहीं कर सकते। रामचंद्र जी सीता को ला नहीं सकते थे कुंभकर्ण रावण को मार करके, तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा कैसे होती? सुग्रीव जी ने इतनी सेवा की है, ये कैसे पता चले? विभीषण जी अपने भाई बंधुओं को कृष्ण के लिए छोड़ दिया और सहायता करके इनके प्राण बचाए। जब इनको सेल लगी तो उन्होंने ही परामर्श दिया, सुसेन वैद्य को बुला लगी और उन्होंने कहा कि महिरावण ले गया है राम और लक्ष्मण को, हमारा रूप धारण कर। तो ये लोग भगवान के लिए सेवा किया, ये कैसे प्रकटित होती? होती यदि रामचंद्र जी इच्छा कर देते। सीता की चोरी नहीं होती, या चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, रावण को ऐसे ही मार करके खत्म कर देते और चले आते, कोई लीला नहीं होती। तो भक्तों का उत्कर्ष कैसे वर्णन होता? इसलिए भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए ऐसा। अच्छा, कृष्ण को जरूरत क्या थी आने का? कंस को मारना यही तो, या असुरों को मारना? गोलोक में बैठे बैठे कर देते, तब गोपियों की महिमा कैसे प्रतीत होती? नहीं होती। उनके ऐसे ऐसे भक्त हैं, इसलिए जितनी भी लीलाएं होती हैं भक्तानाम विनोदाय, भक्तों का विनोदन करने के लिए, विनोदन मैंने यहां पर है जगत में उनकी प्रतिष्ठा। अभी भी मान लें कि कोई सब त्याग वैराग्य करके भगवान का भजन करता है, तो भगवान इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? विलंब करने का कारण क्या है? उसकी प्रतिष्ठा दिखलाएंगे जगत में, देखो ऐसा ये भक्त है, इसके लिए मुझको बाध्य होकर के ये करना पड़ा, सब लोग समझेंगे। प्रहलाद महाराज जी को कष्ट देने की क्या जरूरत? सब भक्ति का खेल है। जब भी कोई दूसरा नहीं था उनका भक्त, और इधर में प्रहलाद महाराज जी भी उनके भक्त। प्रहलाद महाराज जी को जगत कैसे जानता? इसलिए जानता। इसलिए आप लोगों को भी जो कष्ट दे रहे हैं, आपने इच्छा की हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, आप हमको भक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी सेवा करूँ। तो ये एक सेकंड में कर नहीं सकते थे? करते क्यों नहीं? तो आप लोगों की प्रतिष्ठा जगत में कैसे होगी? इसलिए ऐसा कर। अब देखो ना, प्रभुपाद जी को, गुरु जी को, स्वामी जी को देखो। यदि कृष्ण ही कर देते तो ये क्या करते? कर दिया ना। ऐसे ही राई को रंग क्या बना देते हैं? राई को भी पहाड़ बना देते हैं। दरिद्र को क्या कर देते हैं? अंधे को और पंगु को पर्वत पहाड़ पार करा देते हैं। इसके द्वारा, जदुबर परिषद के द्वारा ये दिखला, ये भी दिखला रहे हैं उग्रसेन को, उनके परिकर थे। सूरसेन का राज्य उनको दे दिया, यादवों का राज्य बना दिया। तो उन्हीं का नहीं, इंद्र को जय करके और उनका जो सुधर्मा सभा और पारिजात इत्यादि सब ले आकर के उनको दे दिया। सुधर्मा सभा को दे दिया उनको। इसका मतलब है इंद्र का राजत्व तभी उनको दे दिया। कहे आप बैठे रहिए, मैं जगत को आपके चरणों में गिरा दूंगा। तो उन्होंने इस प्रकार से गिरा दिया। उग्रसेन साधारण आदमी नहीं, इस तरह से दिखलाया। सुधर्मा सभा को भी, पारिजात को भी, देवभोग्य पदार्थों को समझना, ये भी द्वारकापुरी में लेकर के ले आए। इसके द्वारा भी समझो, जब स्वर्ग में गए तो इसके ठीक पहले क्या किया? 16,000 रानियों का, मान युवतियों का उद्धार किया। और ऐसे उदार जिन लड़कियों को कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता था, उनके माता पिता भाई बंधु इत्यादि, उनको उन्होंने ग्रहण कर दिया। उन्होंने ये कहा,
समाज बहिष्कृत करा दिया। पहले
समाज बहिष्कृत हो गई, वो कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। और इसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आप ही झाड़ूदारनी बन करके रहेंगी, आपके घरों में झाड़ू देगी, आपकी रानियों की सेवा करेगी, तो उन्होंने कहा जाता ऐसा नहीं तो हम तुमको रानी ही बना दें। उनके समकक्ष बना करके वैसा ही राजभवन दे करके उनके साथ में विधिवत शादी विवाह करके उनको रख दिया। उसके साथ साथ में समझो, जाम्बवती सत्यभामा के साथ में वो परिहार, रुक्मिणी के पास साथ में परिहार, सत्यभामा के साथ में पारिजात दे करके उनको। और उसी के बहाने पहले वहां जाकर के ज्योतिषपुर में, और फिर वहां से उनका कुंडल और कवच कुंडल था और छत्र, ये सब लेकर के कश्यप की पत्नी अपनी मैया, उनकी पूर्व जन्म की मैया को जाकर के सब दे आए। ये सब लीलाएं समझ लो, द्वारकापुरी की सब लीलाओं को समझो। देवताओं को भी उन्होंने पराजित कर दिए। यहां पर सर्व देवताओं का जय के प्रस्ताव में ये क्या है? परम महिमा उत्कर्ष, समस्त देवताओं को द्वारकापुरी की लीला में भी विजय प्राप्त, ये वैभव उनका है, ऐश्वर्य लीला। किंतु यहां पर यदि कोई कहे जो कृष्ण ने इस प्रकार का ऐश्वर्य राशि को प्रकट करके प्रकट करते हैं और नित्य ही विद्यमान है, तब देवकी जन्मवाद की रूप संभव होइए? यदि भूतकाल में, भविष्यत काल में और वर्तमान काल में ही कृष्ण यदि नित्य वर्तमान है, तो देवकी के पुत्र आपने पहले क्यों कहा? पुत्र का मतलब क्या? जन्म हुआ तो उसके पहले नहीं थे, ऐसा होगा, आपने ऐसा क्यों किया? उसके उत्तर में कहते हैं, स्वयं दुर्भिर रक्षण न धर्मम, अर्थात इच्छा मात्र से ही अशेष अधर्म है जगत में। और अधर्मों का मूल क्या है? अविद्या, अपने को भूलना, भगवान को भूलना। ये अविद्या को भी अपने नाम के स्मरण मात्र से ही, भगवान के उनका शरण लेने से ही सबको दूर कर देते हैं। तथापि क्या करते हैं, अपने भक्तों के विनोदार्थ क्रीड़ा करते हैं। निजे सुख वृत्तत्व पृथ्वत्व आयत्व आदि शुभ लक्षण से संपन्न परम उत्तम अंगदादि द्वारा विभूषित सुदर्शन आयुध धारण करिया अत्यंत सुंदर भुज द्वारा चतुर्भुज द्वारा अधर्म, यहाँ पर ये बतला रहे हैं, इच्छा मात्र से ही तो सब कुछ कर सकते हैं, किंतु भक्तों का विनोद करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा जगत में कायम करने के लिए ऐसी विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बात इसमें ये भी कह रहे हैं कि जगत का अधर्म दूर कर दिया, अविद्या तक को दूर कर दिया, किंतु अपने अधर्म में लिप्त रहकर, कौन सा धर्म, अधर्म, सबसे जगत में जो बड़ा अधर्म है वो काम, उसके द्वारा क्या वो परखिया भाव इत्यादि के द्वारा कोटि कोटि गोपियों के साथ में नित्य परायण रह करके उनके वस्त्र चोरी करके ये सब जो है, किंतु इसको इस रूप में मत समझो, वो जो लीलाएं हैं प्रेम की लीलाएं हैं, उन लीलाओं के श्रवण के मात्र से ही यह धर्म सब अपने आप दूर हो जाता है, ये इनका कहने का तात्पर्य। उसी रूप में वो जैसे मथुरा में आए, सखाओं ने कहा कि आप